Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
Dhanyavad Arjun. Namaskar, Shrotao. Varsh 2024 ke aakhiri Market Mantra mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum aarthik, vyaparik aur share bazaar ki taza khabrein aap tak layenge aur un par charcha bhi karenge. Charcha ke liye aaj hamare studio mein aamantrit hain aarthik visheshagya Puneet Jain. Puneet ji, namaskar. Market Mantra mein aapka स्वागत है.
धन्यवाद सुनो.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी.
इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स मार्जिनली डाउन बाय 109 पॉइंट्स. निफ्टी एंड्स फ्लैट एट 23,645. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक्सटेंड्स द लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग बिलेटेड एंड रिवाइज्ड आईटीआर टू जनवरी 15, 2025. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $74.58 पर बैरल.
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स मामूली गिरावट से 109 अंक कम हो गया. निफ्टी बिना किसी खास बदलाव के 23,645 पर बंद हुआ. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है. और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त. ब्रेंट क्रूड $74.58 प्रति बैरल पर. और अब शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से. आज वर्ष 2024 के अंतिम कारोबारी दिवस बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ. सेंसेक्स 0.14% की मंदी से 109 अंक कम होकर 78,139 पर और निफ्टी 23,645 पर बंद हुआ. 2024 के पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 72,218 पर खुला था और निफ्टी का स्तर वर्ष के शुरुआत में 21,727 था. दोनों सूचकांक इस वर्ष 27 सितंबर को दिन के कारोबार में अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंच गए थे. सेंसेक्स ने 25,978 का स्तर छू लिया था और निफ्टी 26,277 के स्तर पर पहुंच गया था. वर्ष 2024 के अपने न्यूनतम स्तरों पर बाजार 24 जनवरी को पहुंचे जब दिन के कारोबार में सेंसेक्स 70,002 के स्तर तक गिर गया और निफ्टी 21,137 पर आ गया. विस्तारित बाजार की बात करें तो आज के कारोबार में रुख सकारात्मक रहा. मिड कैप सूचकांक 0.13% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई.
In the Indian stock market, the 30-share index at the BSE, the Sensex today ended marginally down and the NSE, Nifty 50 settled flat on the final trading day of this year. Sensex lost 109 points or 0.14% to close at 78,139 and Nifty 50 settled at 23,645. The BSE Sensex had opened the year's first trading session at 72,218 points while NSE Nifty was at 21,727 level. Both the stock market indices had hit their all-time high levels on September 27 this year when the Sensex touched 85,978 and NSE Nifty registered 26,277 level during intraday trade. The indices had registered the lowest levels on January 24 when Sensex had stooped to 70,002 level and Nifty had touched 21,137 during intraday trade. Meanwhile, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange today ended in positive territory. The mid-cap index closed up by 0.13% and the small-cap index surged over 0.7%. In the Sensex pack of 30 companies, 15 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers were Kotak Mahindra Bank, which surged almost 2.5%, ITC climbed over 1.3%, and Ultra Tech Cement rose 1.1%. Conversely, the top laggards, Tech Mahindra plunged over 2.3%, Zomato lost more than 1.7%, and TCS dropped around 1.5%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 15 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers were capital goods gained over 1.3%, industrials advanced over 1.1%, and oil and gas added 1%. Meanwhile, in the top laggards, focused IT dipped almost 1.5%, information technology shed over 1.2% and tech lost 1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,321 companies advanced and 1,647 companies declined, while 111 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 34 companies hit their 52-week high, while 90 hit their 52-week low.
उधर रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 8 पैसे की गिरावट से 85.61 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.8 पर था. आपसे जानना चाहेंगे पुनीत जी, आज आखिरी दिन है वर्ष 2024 का और आज हमने जो देखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग फ्लैट रहे और उनके मुकाबले वहां ब्रॉडर मार्केट में अच्छा बेटर प्रदर्शन रहा तुलनात्मक रूप से. वही हम पूरे साल में भी देख रहे हैं कि 8-9% नेट बढ़े हैं सेंसेक्स और निफ्टी और 20% से अधिक बढ़े हैं स्मॉल कैप मिड कैप. तो अभी आपको बाजार की क्या स्थिति दिखाई देती है, इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या संकेत है?
देखिए, अगर हम पूरे वर्ष पर नजर डालें तो जैसे आपने कहा कि करीब 8-9% अगर हेडलाइन इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो करीब 8-9% इस साल बढ़े हैं. पिछले वर्ष इसमें करीब 12% की बढ़त थी. तो जो एक दौर चला आ रहा है लगातार गेन्स का इन हेडलाइन नंबर्स में वो चलता जा रहा है. और बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि ये 9th ईयर इन अ रो है जब सेंसेक्स और निफ्टी में हमने बढ़त देखी है. तो इतनी बड़ी तेजी बाजारों में लगातार पिछले 9 वर्षों में रही है बाजारों में, ये काफी बड़ी एक अचीवमेंट है मैं कहूंगा. और जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी आप कह सकते हैं कड़ी स्टेबल रही है पिछले 9-10 वर्षों में, उसका शायद ये नतीजा है. खासतौर से जो इन्वेस्टर्स के लिए गेन रहे वो मिड कैप और स्मॉल कैप में रहे. यहां पर इट कंटिन्यू टू बी वेरी हाई, 23-24% गेन्स हैं मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में. हालांकि पिछले वर्ष अगर हम देखें तो करीब करीब 50% गेन्स. तो कुछ हद तक मैं कहूं कि पिछले वर्ष के के मुकाबले इस वर्ष थोड़ी कम गेंस रहे हैं, लेकिन वो जो दौर है फायदे का वो चलता रहा है. सेक्टोरली भी देखें तो डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जो पिछले साल भी उनमें पकड़ थी उसमें आज हमने तेजी देखी है. ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वर्ष भी बहुत अच्छा रहा है. हालांकि अगला वर्ष जो 9 वर्ष का एक स्ट्रीक रहा है, क्या वो अगले वर्ष चालू रहेगा कहना मुश्किल.
उसमें आप एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या गट फील है या क्या आपको लगता है, आकलन क्या है?
देखिए, जो हमारा अनुमान है वो ये है कि आने वाला वर्ष थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बाजारों के लिए. मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस लो सिंगल डिजिट में शायद रहेंगी रिटर्न्स, वो भी काफी अच्छी प्रदर्शन रहेगा. तो मुझे लगता है कॉशियस रहना चाहिए. काफी वैल्यूएशंस अभी बढ़ी हुई हैं और इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. मुझे लगता है अगले वर्ष के लिए थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है.
पुनीत, we have seen gains in the mid cap and small cap indices as you mentioned earlier. Really, this is for retail investors or for institutional investors who are looking at the growth story. But you've always been an advocate of value investing. How do you see the direction of the stock market in the next quarter? And more importantly, corporate results, do you see them focusing on profit margin or sales? How do you see that translate into a sustained bull market, or do you see the bears taking over?
So Arjun, the one important factor to consider here is that last 4-5 years after the beginning of pandemic, the COVID-19 pandemic, which was 5 years back. So it seems such a recent memory, but the fact is that it happened 5 years back. And after that, we have seen a very rapid growth in economic activity. We've seen economic growth, GDP growth at about 7-8% in the last 2-3 years. And also corporate earnings were growing at more than 15-20% compounded annually. So, and that, I think, laid the ground for stock markets to run up so high, as we have seen, almost record levels that we have seen markets. Our expectation is that the corporate earnings growth will slow down in the coming year. We already know that GDP growth is moderated a little bit. From 7%, it's down to about 6.5%. And we hope to maintain that pace of growth.
Price-to-earnings ratio?
The price-to-earnings ratio, if you see, is again at historically high levels. In many mid-cap and small-cap stocks, it is more than 50 times or 100 times earnings, which is stratospheric, which is really very high. And even in in large caps, the PE multiples are still very high. So overall, if you look at valuations, if you look at prospects for earnings growth, if you look at GDP growth, I think this is a time to be cautious. Like I said earlier, I think we need to take a step back, take a breather. Investors need to be cautious. They don't want to commit more funds into the market. But overall, I think long-term, if you ask me, prospects are very good, very, very strong. But this is a time to kind of consolidate rather than keep expecting very high returns.
तो आप जो caution की बात कर रहे हैं, अगर caution नहीं होती तो किस तरह का behavior होता है? क्योंकि कहा जाता है कि emotional वो नहीं होनी चाहिए, investment in the stock market या fear और greed, इन दो चीजों से बचना चाहिए. तो थोड़ा सा बता सकते हैं कैसे manifest करता है ये जो undesirable behavior है, investment behavior?
देखिए सोनू, जो ज्यादातर हम देखते हैं कि जब market bull run होता है और उसमें जरा भी correction आता है तो investors जो है वो एक तो प्रॉफिट बुक नहीं करते ऊपर लेवल पर, दूसरा ये है कि जब भी बाजार में थोड़ा करेक्शन आता है तो वो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहली बात ये. लेकिन उससे ज्यादा जो मुश्किल या खतरनाक बात है, मैं कहूंगा कि क्योंकि जो अच्छे शेयर्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, इसलिए ये टेम्परमेंट है स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का, लो क्वालिटी स्टॉक्स जो उनको लगता है सस्ते हैं या उनकी दाम कम है, कोई 10 रुपए का है, 20 का है, 50 रुपए का शेयर है, उसमें टेम्पटेशन होती है कि उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा खतरा होता है स्टॉक मार्केट बुल मार्केट में, कि रिटेल इन्वेस्टर अच्छे कंपनी के शेयर्स लेने की बजाय वो पेनी स्टॉक्स लेना शुरू कर देते हैं, लो क्वालिटी स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सस्ते हैं, उनका दाम कम होता है. तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे करेक्शन होगी, कुछ शेयर्स जिसमें गिरावट हम देखेंगे, शार्प फॉल देखेंगे, तो इन्वेस्टर्स शुड नॉट फॉल फॉर द ट्रैप कि वो खरीदना शुरू कर दें जस्ट बिकॉज एक शेयर है उसकी 50% दाम गिर गए तो आपको लगता है वो सस्ता हो गया. ऐसा नहीं है, उसकी उसकी कंपनी के बारे में जानना, उसकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स देखना, वो बहुत जरूरी, तभी सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. एकदम ये सोचकर कि सस्ता हो गया कोई शेयर तो मैं ले लूं, वो नहीं करना चाहिए, सबसे कॉमन मिस्टेक है.
पुनीत, इफ यू लुक एट टुडेज मार्केट सेशन इन द फर्स्ट हाफ, द मार्केट एक्चुअली करेक्टेड क्वाइट शार्पली. इट फेल टू 77,560 बिफोर इट रिकवर्ड टू 78,139 ऑन क्लोजिंग, जस्ट डाउन बाय 109 पॉइंट्स. वन फेल इट सिंबॉलिक ऑफ व्हाट 2025 इज टू होल्ड. The VIX, the volatility index, is under 15 right now. What is the level of retail participation, or are we seeing volume driven only by institutional investors right now?
So Arjun, in fact, right now, most of the institutional investors are on holiday. So the volumes are really low from FI or institutional angle. Of course, domestic mutual funds are working, but foreign investors are somewhat...
DIIs were the net buyers again.
Again, and they have been supporting the market because FI figures, I saw, they still sold more than 4,000 crore worth of stocks today. And DIIs supported the market by buying almost similar kind of quantity. So clearly, I think it is domestic investors who still continue to be the pillars of this market, and foreign investors are still selling. My own feeling is that going forward, we will see further churn in this market. Now, we might see money flowing from small caps and mid caps to large caps. Large caps, of course, will offer greater safety and more less risk.
Value investing.
And value investing and long-term value investing. And many stocks, you'll be surprised. Many FMCG, in fact, one of the worst performing sectors in the past year was the FMCG sector. So, where most multinational companies operate, very large, well-known names, they operate. And their stocks did not rise at all. I mean, the index was absolutely flat.
But they've hiked the prices of their products in the market.
So, of course, there was a slowdown in consumption. So we've seen those. No, the top lines are really they kind of fell by 2-5%, showing weakness in consumption. And there's a lot of expectation that this consumption will recover in the coming year. And at the same time, these companies have become cheaper on the PE multiple also. So I think investors need to look at these companies and look at companies where valuations come down and they are very good, proven, good stories compared with small caps, mid caps, where they may not know much about the company. I'm not saying that we should not invest in small caps, mid caps, but I think adequate research has to be made before investing in these companies.
Puneet ji, 86,000 tak pahunch gaya tha 27 September ko, jaise humne apni story mein padha, that was the all-time high. Aur usse lagbhag 10% abhi कम है. सो आपको लगता है कि वो हाइट्स फिर 2025 में आप एक्सपेक्ट करें? क्या ट्रिगर्स आपको लगता है हो सकते हैं ऐसे जो पॉजिटिव बूस्ट दे सकते हैं मार्केट्स को?
देखिए, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से करीब 10% ऊपर से बाजारों में करेक्शन आई है, तो ये तो संभव है कि अगर बाजारों में दोबारा से पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है, FII की बाइंग शुरू होती है, तो ये संभव है कि हम दोबारा से न्यू हाइज बनाएं. काफी हद तक ये डिपेंड करेगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कैसे पैन आउट करती है, क्योंकि ये देखिए बहुत अगले 2-3 महीने बाजारों के लिए या इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है. एक तो अमेरिका में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा जिसकी पॉलिसीज जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. हमें नहीं पता कि कैसे जो नया US एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज वो लाएंगे, ट्रेड पॉलिसीज क्या होंगी, तो मुझे लगता है वो एक बहुत अनसर्टिनिटी है. फिर बजट, आप जानते हैं कि सामने बजट आ रहा है, उसके 10 दिन के बाद उसके 1 फरवरी को बजट का पेश आएगा, तो क्लियरली जो चैलेंजेस है मार्केट के सामने या अनसर्टेनिटी काफी है. तो मुझे लगता है ये फर्स्ट क्वार्टर में कोई हम बड़ी मूवमेंट शायद ना देखें बाजारों में, और उसके बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तब शायद हम थोड़ी रिकवरी देख सकते हैं.
लेट्स मूव ऑन टू मोर मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज नाउ. इंडिया कोर सेक्टर ग्रोथ रोज बाय 4.3% इन नवंबर दिस ईयर ऑन एन एनुअल बेसिस, शोड द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टुडे. द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स रिकॉर्डेड positive growth as per the data. Coal production increased by 7.5%, petroleum refinery products rose by 2.9%, fertilizers witnessed an uptick of 2%, steel increased by 4.8% and cement increased by 13%, while electricity gained 3.8% in November of the current fiscal year. Meanwhile, natural gas declined by 1.9% and crude oil fell by 2.1%. The combined index of 8 core industries measures the combined and individual performance of production of 8 core industries, which are cement, coal, crude oil, electricity, fertilizers, natural gas, refinery products and steel. The 8 core industries comprise 40.2% of the weight of items included in the index of industrial production. Puneet, the core data is very important when you're computing factory output, which is IIP. But, you know, if you look at petroleum refinery products, it's went up by 2.9%. It's 15% of our export basket. Even in the stock market story, capital goods in the stock market, which has gone up by 1.3%. Engineering goods are now dominating 27% of the export basket. What is this telling you about our macroeconomy, the real economy? Because the RBI has projected a 6.6% growth for the current financial year. So how important is the next quarter when you read these numbers?
So Arjun, interestingly, when second quarter numbers came, quarter ending September, everybody was very disappointed because GDP numbers came far below expectations. We had corporate earnings, which are not very good. And there were fears that there may be a significant slowdown in economic activity. Well, RBI is, of course, in the latest report said that the economic activity will recover in coming quarters. So I think if you look at the November data, core industries data, which is 4.3% growth, I think that is pretty good. And which means that indicatively we can say that IIP numbers would be closer to 6-7% growth, which is basically manufacturing. So my own sense is that this shows that there is a nascent recovery in consumption, in private sector consumption and private sector investments. But of course it is very slow. I'm not saying that these numbers are very, very bullish and therefore we'll see roaring growth back to 7.5%, 7% GDP growth. But I think the fall in GDP that we were expecting, the kind of, you know, plateauing of that growth, that may have been stalled to some extent. We probably can therefore expect, this is my reading, when I look at this data, so my sense is that we will see GDP of about 6.5% growth in the next two quarters, which is good enough given the current situation.
लेते हैं अगली खबर. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है. इससे करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल और संशोधित करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिलेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है. इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2024 के अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। ये योजना करदाताओं को एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में मददगार है। क्या लगता है आपको, ये जो सिंप्लीफिकेशन लगातार इनकम टैक्स में सहूलियत दे रहे हैं, डेट एक्सटेंड करके अलग अलग तरह से, जो डिजिटाइजेशन भी हुई है, सो इसी कारण हम देख रहे हैं कि हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो लगातार बढ़ोतरी दिखा रहे हैं।
बिल्कुल सुनो, देखिए जो जिस प्रकार से रिफॉर्म्स हुए हैं डायरेक्ट टैक्सेस में वो काफी सिग्निफिकेंट है और उस सहूलियत के लिए है इन्वेस्टर्स टैक्स पेयर्स के लिए। और मुझे लगता है कि ये लगातार एक सेंसिटिविटी दिखाती है टू मेक ईज ऑफ लिविंग, जिसे हम बात कर रहे थे, तो उसके प्रति एक अच्छा कदम,
क्योंकि पहले बहुत एक दहशत होती थी इनकम टैक्स को लेकर।
काफी हद तक वो ऑटोमेटिक है, बड़ा प्रॉम्प्ट है प्रोसेसिंग, तो एक अच्छा एक कदम है।
In more news, in the last 10 years, the Make in India initiative has worked as a pivotal step in India's nation-building efforts. Launched on 25th September 2014 by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, this scheme has completed a landmark decade of empowering India to become a global manufacturing hub. A report.
India has turned the tide, transforming from Make in India to Made in India, a leap that speaks volumes about its grit and determination. The program was aimed at revitalizing the manufacturing sector, enhancing job creation, and boosting the country's economy by fostering local production. Now with the Make in India 2.0 phase, the program continues to drive forward, reinforcing India's position as a major player in the global manufacturing landscape. Make in India has brought massive foreign direct investment FDI starting from over $45 billion in 2014-15 to a record of around $85 billion in 2021-22. Between April 2014 and March 2024, India attracted over $667 billion in FDI, representing nearly 67% of the total FDI received over the last 24 years. A decade after its launch, Make in India broke several records, cementing its success as one of India's most impactful economic initiatives. Make in India has become a symbol of resilience, innovation, and progress. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
पुनीत, क्या कहेंगे आप, मेक इन इंडिया जो मुहिम चली है उससे हम एक जो यू नो डायरेक्ट इम्पैक्ट देख रहे हैं रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, वो एक बहुत बड़ा सबूत है। और भी जो हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो इन एफर्ट्स के बहुत इनका योगदान आप कहेंगे है?
बिल्कुल, सुनो देखिए, जितने भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स काफी लैंडमार्क इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, उसमें मुझे मैं ये कहूंगा कि जो मेक इन इंडिया है ये बिल्कुल एक हिस्टोरिक पॉलिसी रहा। मुझे लगता है कि लिबरलाइजेशन जब हुआ 1991 के बाद, उसके बाद सबसे बड़ा कदम था ये इंडिया के जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम है उसको बेहतर करने का, क्योंकि लिबरलाइजेशन पॉलिसी तो रही लेकिन उसको कारगर रूप देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया मेक इन इंडिया ने। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ मिली, उससे एम्प्लॉयमेंट मिली, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आई उसका नतीजा देखते हैं। मोबाइल आज इंडिया ना सिर्फ अपने लिए बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, डिफेंस के हम काफी बड़े आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका सबके लिए प्रत्यक्ष है जो इसकी अचीवमेंट है इस प्रोग्राम की।
और इसमें एक और चीज मेंशन है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है, सो उससे जो ये छोटे छोटे बिजनेसेस बनते हैं उससे भी एम्प्लॉयमेंट।
देखिए, जो इसमें एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम लाई गई, जिससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग थी उसको बहुत बड़ा एक बल मिला ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पीट करने के लिए। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ना सिर्फ वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ना लाइसेंसिंग की टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, और जो जितने भी इकोसिस्टम है उसको रिफॉर्म किया गया। ये एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये बहुत बड़ा कदम रहा पिछले 10 साल।
मोर न्यूज, इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर द फर्स्ट 8 months ऑफ दिस फिस्कल ईयर थ्रू नवंबर स्टूड एट 8.47 लाख करोड़ रुपीज और 52.5% ऑफ द एनुअल एस्टिमेट्स, डेटा from the Ministry of Finance showed today. Total receipts stood at 18.94 lakh crore rupees, while overall expenditure in April to November was 27.41 lakh crore rupees. These figures were 59.1% and 56.9% of fiscal year's budget target. Tax revenue was 14.43 lakh crore rupees and non-tax revenue was 4.27 lakh crore rupees. Very briefly, do you see the fiscal deficit at under 5%? Looking at FRBM and the government's commitment.
Yes, definitely. If you look at the numbers, we are doing much better than last year in terms of maintaining that fiscal discipline. And I'm sure we'll meet the budget estimate in the current year.
लेते अगली खबर. भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां GNPA सितंबर 2024 में कुल अग्रिम के 2.6% तक कम हो गई हैं. ये पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है. इस अवधि के दौरान शुद्ध NPA अनुपात लगभग 0.6% रहा है. पिछले दो वर्षों में बैंकों के GNPA में बड़े कर्जदारों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है. बैंकों के बड़े कर्जदारों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है. GNPA अनुपात मार्च 2023 में 4.5% से गिरकर सितंबर 2024 में 2.4% रह गया है. उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में शीर्ष 100 कर्जदाताओं में से किसी को भी NPA घोषित नहीं किया गया है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में भी सुधार हुआ है. कर भुगतान के बाद इनके लाभ में साल दर साल 22.2% की वृद्धि हुई है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों ने क्रमशः 30.2% और 20.2% की वृद्धि दर्ज की, जबकि विदेशी बैंकों ने 8.9% की वृद्धि हासिल की है.
मूविंग ऑन टू द एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स नाउ.
प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार न्यू ईयर्स ईव के उपलक्ष में बंद थे. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक आज 1.5% से अधिक लुढ़क गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में 0.21% की गिरावट आई. हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.09% की मामूली बढ़त दर्ज हुई. इससे पहले आधिकारिक आंकड़ों से पता लगा कि चीन की विनिर्माण गतिविधि दिसंबर में लगातार तीसरे महीने बढ़त में रही, लेकिन बढ़त की गति धीमी पड़ गई. चीन में कमजोर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल में आर्थिक बढ़ावे के उपाय घोषित किए जाने के बावजूद वहां का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI नवंबर के 50.3 के मुकाबले कम होकर दिसंबर में 50.1 पर आ गया. चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार इस अवधि में गैर विनिर्माण PMI जिसमें कंस्ट्रक्शन और सेवाएं शामिल है नवंबर में कम होकर 50 पर दर्ज होने के बाद दिसंबर में बढ़कर 52.2 हो गया. यूरोपीय क्षेत्र की करें तो यहां जर्मनी का बाजार न्यू ईयर्स ईव के कारण बंद था और ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों 0.6% से अधिक की तेजी पर थे.
Moving on to the U.S. stock market, U.S. stocks closed lower yesterday amid profit booking and limited triggers during a holiday-shortened week. NASDAQ Composite shed over 1.1%, S&P 500 dropped over 1%, and the Dow Jones Industrial Average lost almost 1%. The U.S. markets will remain closed tomorrow for the New Year Day. The next scheduled market closure will occur on January 20, 2025, in observance of the Martin Luther King Jr. holiday. We've seen a correction in the U.S. market, not just today or yesterday, but for the last 2 weeks. Why is that the case? Briefly.
I think there was substantial run-up in U.S. markets. In fact, if you look at the global markets, the U.S. markets continue to be by far outstripped performance, and they've grown about 23% in the current year. So I think there was year-end profit booking by investors, and probably now there's a new government taking place, so they'll probably reassess and then reinvest in the markets.
Well, let's have a look at the crude oil market. Now, oil prices rose today, boosted by signs of growth in Chinese manufacturing activity. Brent crude was trading at $74.58 per barrel, gaining 0.8%. WTI crude also added over 0.8% to trade at around $71.62 per barrel, according to the latest report.
उधर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने 24 कैरेट सोना 0.21% बढ़कर 76,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी 0.23% गिरकर 87,420 रुपए प्रति किलो पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.22% बढ़कर 76,425 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति किए जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.18% गिरकर 87,371 रुपए प्रति किलो पर था। बहुत ब्रीफली, आपको लगता है कि ये प्रेशियस मेटल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे जैसे जैसे?
देखिए, जैसे डॉलर इंडेक्स क्योंकि 108 से ऊपर है, अगर वो वहां पर थोड़ा करेक्शन आता है डॉलर इंडेक्स में, तब शायद इनमें थोड़ी बढ़त हो सकती है, या 20 जनवरी के बाद जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी यूएस में तभी हम ये देखेंगे।
समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी शामिल होने के लिए।
धन्यवाद सोनू।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स मार्जिनली डाउन बाय 109 पॉइंट्स, निफ्टी एंड्स फ्लैट एट 23,645। इंडिया स्कोर इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 4.3% इन नवंबर दिस ईयर एज कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक्सटेंड्स द लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग बिलेटेड एंड रिवाइज्ड आईटीआर टू जनवरी 15, 2025 एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $74.58 पर बैरल। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ। गुड बाय।